ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ
ਅਖੰਡਮੰਡਲਾਕਾਰਮ ਵਿਆਪਤਮ ਯੇਨ ਚਰਾਚਰਮ ਤਤਪਦਮ ਦਰਸ਼ਿਤਮ ਯੇਨ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ। ਸ਼ੰਕਰਮ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਯਮ ਕੇਸ਼ਵਮ ਬਾਦਰਾਯਣਮ ਸੂਤ੍ਰਭਾਸ਼ਯਕ੍ರತೌ ਵੰਦੇ ਭਗਵੰਤੌ ਪੁਨಃ ਪੁನಃ। ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ। ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ। ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ। ಸದ್ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೀ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೆ ಉನ್ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಬ್ಯಾಠ ಕರ್ಕೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੇਦਾਂਤ ਕੀ ਚਰਚਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਦੁੱਖੋ ਕੀ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਵਿਰਤੀ ਔਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਤਾਤਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੀ ਕਾ ਯਹੀ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਾ ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਯਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਕਭੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸੁੱਖ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸੁੱਖ ਨਿੱਤ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਹਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਕਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਣਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਕਸ਼ਣਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਕਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਸ਼ਣਿਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ, ਠਹਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਉਸੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਰਤੀ ਤੀ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਸੰਸਰਣ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਉਸਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿਤੇ, ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਗੱਛਤੀ ਤੀ ਜਗਤ, ਜੋ ਚਲਤਾ ਉਸਕੋ ਜਗਤ ਕਹਿਤੇ, ਉਸੀ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਜੋ ਠਹਿਰਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਕੋ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਬਟਾਊ ਸੋ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹ ਤਾ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ। ਬ੍ਰਿਖ ਜੀ ਬ੍ਰਿਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਜੋ ਛਾਇਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਬਟਾਊ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਯਾਤਰੀ ਕੋ, ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਥਿਕ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ, ਛੋੜਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਨਾ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਯੋਗ ਜੋ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਆਏ, ਨਦੀ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਨਵਕਾ ਕਾ ਜੋ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਛਣ ਮਾਤਰ ਕੇ ਲਈ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਆਏ। ਜੋ ਨਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਕਭੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਯੋਗ ਜੋ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਆਏ, ਨਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਾ ਕਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ। ਹਰੀ ਓਮ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ जो संसार के जितने सुख हैं ना वो क्षण भर के लिए हैं। वृक्ष की जो छाया है, महाराज जी ने हमारे को कितने सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए हैं कि वृक्ष की जो वृक्ष की छाया होती है उसके साथ रंग अर्थ कोई प्रेम यदि करता है ना तो उसकी भूल है कि वो छाया रहेगी। वृक्ष की छाया से रंग लावे ओह बिनसे ओह मन पछतावे। वृक्ष की छाया जो है ना वो बिनस जाती है, खत्म हो जाती है। जब तक सूर्य है तब तक उसकी छाई है ना। जब सूर्य चला जाएगा, अस्त हो जाएगा, तो छाया सत समाप्त हो जाएगी। तो जो उसके साथ प्रेम लगा करके बैठा है उसको पछताना पड़ेगा। इसी प्रकार जो बटाऊ से जो लावे नेह, बटाऊ कहते हैं जो पथिक होता है, राही होता है, यात्री होता है, उसके साथ कोई प्रेम करेगा तो उसको पछताना पड़ेगा। ताको हाथ ना आवे के कब तक उसके साथ में जाएगा। जब उसका सफर समाप्त हो जाएगा तो वो अपने घर चला जाएगा, फिर किसको साथ में किसके रहेंगे। वृक्ष की छाया से रंग लावे ओह बिन से ओ मन पछतावे, बटाऊ से जो लावे नेह ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। यहाँ आकर के महाराज जी ने निश्चित किया कि हे जीव, जो हरि के नाम के साथ प्रीति करनी वो सुख देने वाली है, क्योंकि कभी उसका नाश नहीं होता। प्रीति ऐसी हो जिसका कभी नाश ना हो। प्रेम, प्रेम का तो क्या सुख, ऐसा सुख चाहिए हमारे को जिसका कभी नाश ना हो। तो ऐसा सुख संसार के विषयों में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्वयं नाश होने वाले हैं ना, तो उनका सुख भी उतनी देर है जब तक विषय हैं। हम लोगों को ये भ्रम हो गया, अध्यास हो गया कि ये संसार के जो विषयों का सुख है ना, इसलिए उनके पीछे दौड़ते हैं ना। सुख का लेश मात्र है, उसमें आभास मात्र है। जैसे पहले बताया था, ये वस्त्र जो है ना, वस्त्र पहने हुए ना जो फोटो के ऊपर, ये वस्त्र नहीं है, वस्त्र आभास है। लेकिन हमारे को हम कहते हैं वस्त्र हैं, कितने बढ़िया वस्त्र पहने हैं। वस्त्र कहाँ है वो, हम लोगों को, हम उनको वस्त्र ही बोलते हैं, वस्त्र नहीं है वो। वो जो चित्र है वो ही असली नहीं है, तो उसके वस्त्र असली कहाँ से होंगे। हमारी निष्ठा है वो अलग बात है, महापुरुषों की, गुरुओं की जो चित्र होता है उसके ऊपर हमारा विश्वास है कि हमारे गुरु ही बैठे हैं। लेकिन परमार्थ में यदि विचार करते हैं तो जो चित्र बना होता है ना दीवार के ऊपर, उसमें वस्त्र भी होते हैं, वस्त्रों का रंग भी होता है। वो वस्त्र कहाँ है, रंग कहाँ है, है कुछ भी नहीं है, उसका आधार केवल दीवार है। लेकिन हम कहते हैं कितना सुंदर चित्र है, कितने बढ़िया बढ़िया वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं, है कुछ भी नहीं वहाँ दीवार के बगैर। लेकिन हम लोगों को तो बहुत बढ़िया लगता है ना। ऐसे ही जो मतलब सिनेमे में फोटो आती सामने, उसका आधार क्या है, पर्दा ही तो है और कुछ आधार नहीं उसका। उसके पर्दे में दिखाई दे रही है, पर्दा भी आधार नहीं है, पर्दा भी अधिष्ठान नहीं उसका। वैसे तो जो प्रोजेक्ट चलता है उसी से दिखती है, जब प्रोजेक्ट बंद कर देंगे तो फोटो कहीं भी नहीं, पर्दा वैसे का वैसे सफ़ेद रह जाता, उसमें कुछ भी नहीं आता। तो अध्यास है ना हम लोगों को, थोड़ी देर के लिए तो हमारे को वो भी सत्य लगती है फिल्म, जब तक हम देखते हैं सत्य लगती है। उसमें कोई पात्र उसका यदि मर जाता है तो हम लोगों को क्या हाल होती है, हमारी क्या हालत होती है। कोई भी नहीं मरा, कौन मुआ रे कौन मुआ। गुरु महाराज जी कहते कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मेरे करो बेचारा, ये तो चलत भया। उसकी बात नहीं करते, हम लोगों की बात करते हैं, संसार के लोगों की, कि कोई भी नहीं मरा। महाराज जी कहते हैं आपको भ्रम हो गया कि हमारा पिता मर गया, हमारी माता मर गई, हमारा बंधु मर गया, कोई भी नहीं मरा, कुछ हुआ ही नहीं, ये तो चलत भया। ये तो कहते हैं कि चरित्र है, जैसे आपने फिल्म में मरा हुआ देखा ऐसा ही ये है। फिल्म में भी कोई मरा नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं मरा, मरा तो शरीर है, कोई भी नहीं मरा। लेकिन हम लोगों को उसमें इतना बड़ा अध्यास होता है कि कई लोगों की तो उसके साथ ही मृत्यु हो जाती है, कई लोगों की साथ ही में अटैक हो जाता उनको। अभी ये बात कर रहे थे ना मोह की, इतना मोह हमारा प्रबल है कि हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते। इतना अध्यास है कि हमने उसको और अपने आप को एक ही मान रखा है, जो मरा है ना उसको और अपने आप को एक ही मान रखा, इसलिए उसके साथ ही हमारे भी प्राण छूट जाते हैं, इतना प्रबल मोह है। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि लोग बहुत पीटते हैं, रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया, को मरे ना मोया ना ले, लेकिन कभी भी किसी मरे के साथ मरता नहीं है। रोते बहुत हैं लोग, दिखावट मात्र रोते हैं बहुत, लेकिन कभी कोई किसी के साथ मरता है? कोई नहीं मरता है। कहते बहुत हैं पुत भाई पाती जय रोवे, सब कहते रोते हैं, लेकिन मरता कोई किसी के साथ नहीं है, क्योंकि सब स्वार्थ की प्रीति है ना। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, हरेक आदमी कहते स्वार्थ के वशीभूत प्रीति करता है। स्वार्थ का अर्थ होता कि अपना अर्थ, मतलब प्रयोजन सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। अपना प्रयोजन क्या है हम लोगों को? हम लोगों को किसी से कुछ पैसा या किसी से कोई संपत्ति मकान लेने का तात्पर्य नहीं है, हमारे को सुख चाहिए। यदि हम किसी की संपत्ति जो है लूटते हैं या किसी से कब्जा करते हैं तो किस लिए? सुख के लिए करते हैं। संपत्ति से हमारे से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारे भी जहाँ छूट जाएगी, लेकिन कहते भी उससे हो सकता सुख मिल जाए। दूसरों की भी संपत्ति अपने कब्जे में करने का अर्थ क्या होता? भी और सुख मिल जाए। तो कहते हैं जब बच्चा छोटा होता ना, छोटा सा बच्चा होता है जो बालक, तो उसको जितना आनंद अपनी माता के दूध पीने में आता कहीं भी नहीं आता, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। जब उसके मुंह में दूध आता है तो सब कुछ भूल जाता हो, उसको पता ही नहीं चलता। जब तक लेकिन उसकी माँ के साथ प्रीति रहती है तब तक। जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना वो, तो क्या होता है उसको? फिर खेलने की इच्छा होती है ना, खेलने की। तो माता उसको क्या करती है? एक खिलाने वाली रख देती है उसको, उसको खिलाने वाली के पास जब दे देती है ना, तो उसका माता से प्रेम खत्म हो जाता है। कभी कभी आता है तो दूध पीता है, तब फिर खिलौने वाली के उसी के पास चला जाता है। तो जो खिलाने वाली होती है वो भी क्या करती है? बहुत देर थोड़ी उसको उठा सकती है, वो ले आकर उसको खिलौना ले आकर के दे देती है, वो उसको भी छोड़ के खिलौना पकड़ लेता है। तो थोड़ा और दूर हो जाता है माता से, वो खिलौना लेकर बाहर निकल जाता है। तो फिर तो उसको जब थकावट होती है तब माता के पास आता है, वैसे नहीं आता। थोड़ी देर के लिए बैठता है, उसके बाद तो फिर भाग जाता खिलौना लेके बाहर में। तो एक खिलौना लेकर के थोड़ी देर खेलता है, तब उसको अपने जो साथ वाले बच्चे या अपने भाई बहन होते हैं उनके खिलौने भी वो खींचता है अपनी तरफ, लूट लेता है कि ये भी खिलौने सब मेरे पास ही आ जाएं, तो मेरे को सबसे ज़्यादा सुख मिल जाए। लोग बोले रोते रहें कुछ भी हो जाए, सबके खिलौने इकट्ठे कर लेगा, जो बड़ा जिसमें बाल होता है ना, बाकी के सबके खिलौने ले लेता है। उसको अपने सुख की बात है, दूसरों से मतलब नहीं। लेकिन क्या होता है कि सारे संसार के खिलौने भी वो अपने कब्जे में कर लेता, तब भी उसको सुख नहीं आता। पहले छोटे छोटे खिलौने लेता है ना, जब बड़ा होता है तो कारें मोटरें गाड़ी जितना कुछ होता है ना सब अपने कब्जे में करता है। ये भी सब खिलौने ही तो हैं, सारी संसार के खिलौने भी उसके कब्जे में कर दो तब भी वो कहता कि मेरे को सुख नहीं है, मेरे को नींद नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी खिलौने में सुख नहीं है। कोठी है, कार है, भाई बंधु है, कुछ भी उसको, फैक्ट्री है, जितने खिलौने उसने इकट्ठे किए किसी में सुख नहीं मिला। जो सुख चाहता था वो नहीं मिला, तृप्ति तो उसकी हुई नहीं, अंत में फिर छोड़ना पड़ता उसको। तो हम लोग तो खिलौनों में सुख भालते हैं ना, खिलौनों में सुख देते हैं, सारे संसार के खिलौनों में। खिलौने में सुख नहीं है। लेकिन भक्त जी तो एक जगह कहते हैं रोगन राम खिलौना जाना। कहते हैं भक्त जी महाराज कि लोगों ने तो भगवान को खिलौना बना रखा है, लोगन राम खिलौना जाना। लोगों ने भगवान को भी एक खिलौना समझ रखा है। ले आते हैं ना खिलौना खरीद के, भगवान का भी एक बना हुआ खिलौना नहीं मिलता, उसको ले आते हैं, उसको भी खरीद के, तो उसको भी जैसे आम लोगों बच्चों से खिलौने खेलते हैं ऐसे भगवान को खिलौना मानते। तो भगवान कोई खिलौना थोड़ी है, जो व्यापक है सर्वत्र है। ठीक है, खिलौना उसी को उसी की याद दिलाता है जो कोई बना रहता है, फोटो रहती है भगवान की, लेकिन उसको खिलौना जाना है। लोगों ने खिलौना ही समझते हैं, तभी तो जैसे खिलौने से सुख थोड़ा सा सुख मिलता ना, ऐसा भावते हैं भगवान तो सुख का स्वरूप है। हम लोगों को सुख चाहिए ना, तो सुख कहाँ से मिलता है? सुख कहते हैं कि सुखदाई जो हर की प्रीति वो है, हर के नाम की प्रीत सुखदाई, हरि के नाम के साथ जो प्रेम करना वो सुख देने वाला है। कोई नौकरी में सुख देखता है, कोई दुकान में सुख देखता है, कोई कहीं ना कहीं सुख की इच्छा करके लोग भटकते हैं, लेकिन उनको तृप्ति कहीं से भी नहीं होती। थोड़ी देर के लिए लगता है, उसके बाद में फिर दुखी हो जाते हैं। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। आनंद का अर्थ भी तो सुख है ना, परम प्रीति जो होती ना, परम प्रीति का जो विषय होता है उसको आनंद कहते हैं, जो सबसे अधिक प्रीति का विषय होता है उसको आनंद कहते हैं। तो आनंद आनंद साहब कहते, दुनिया कहती है मेरे को बड़ा आनंद है, मेरे को बड़ा आनंद है, मेरे को दुकान में आनंद है, मेरे को नौकरी में आनंद है, मेरे को महफिल में आनंद है, मेरे को सिनेमे में आनंद है, लेकिन जो असली आनंद है आनंद गुरु ते जाने, वो तो गुरु से ही प्राप्त हुआ है और कहीं से होता नहीं है। तो हम लोग गुरु चरणों में आकर के जो आनंद हमारे को चाहिए ना, असली आनंद, उसकी खोज में हैं, वो आनंद हमारे को गुरु चरणों में मिलता है, सत्संग में मिलता है। हम विचार कर रहे थे आत्मा की, जो कल जहाँ पर हमने छोड़ा था कि पहले हमारे को प्रपंच जो है उसके लिए विस्तार से बताया कि ये प्रपंच कैसा है, जड़ है, दुख रूप है, अनित्य है, कार्य रूप है, विनाश हो जाता है, ठहरता नहीं है, ये पांच कोश हैं, तीन शरीर हैं, तीन अवस्था हैं, पांच तत्व हैं, सारा हमारे को प्रपंच के बारे में विस्तार से बताया। तो दो ही चीज़ें हैं ना, एक आत्मा और दूसरा अनात्मा। ये जो हमारे को बतलाया सब अनात्मा है। अब हमारे को आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा कैसा है। जब दोनों को अलग अलग हम जान जाएंगे तो फिर हम विचार करके जो अनात्मा है उसको छोड़ देना है, जो आत्मा है उसको ग्रहण करना है। तो आत्मा को दो प्रकार से बताते हैं। किसी भी चीज़ को बतलाने के लिए उसके गुण बताने पड़ते हैं, उसकी विशेषता बतानी पड़ती है कि इसमें क्या खूबी है, तभी हमारी प्रीति उसमें बढ़ती है। तो आत्मा में कहते दो प्रकार के विशेषण है आत्मा के, एक तो विधेय विशेषण है और दूसरे निषेध हैं। आत्मा को आप विधेय रूप से भी जान सकते हैं, निषेध रूप से भी जान सकते हैं, दो प्रकार से। विधेय रूप से आत्मा के विशेषण बताते हैं, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, साक्षी है, कूटस्थ है, ये सब विधेय मतलब विधान किया है कि ऐसा उसको मानो। या उपनिषद में कहते हैं, श्रुति कहती है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे यह भूत प्राणी उत्पन्न हुए हैं वो आत्मा है। तस्माद्यजतः जन्माद्यजतः जन्माद्य जता, जता मतलब जिससे, जन्मादि जन्म है मतलब उत्पत्ति है, स्थिति है, लय जिससे होती है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। ये विधान किया है ना, ये तटस्थ लक्षण इसको बोलते हैं। एक आत्मा के स्वरूप लक्षण है, दूसरे तटस्थ कहते हैं, जो अलग रह करके किसी को बताता है। ये उत्पत्ति स्थिति और लय जो है ना, ये ब्रह्म के आत्मा के बारे में बताती, लेकिन अलग रह करके। उसमें उत्पत्ति नहीं है, उसमें स्थिति नहीं है, लय नहीं उसमें। जैसे हम बोलते ना, हमारे को किसी ने पूछता है कोई कि फलाने आदमी की कोठी कहाँ है, तो हम कहते हैं वो जिसके ऊपर कौआ बैठा है वो उसकी कोठी है। वो कौआ उसका अंग नहीं है, कौआ वहाँ रहता नहीं है, वो उसको बता रहा है तटस्थ होकर के। तटस्थ कहते हैं जो अलग रहता है, उसका उसके साथ संबंध नहीं है, लेकिन उसको बताता है। तो कौआ जो है वो वहाँ रहता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसने उसको बताया कि जो उसका घर है। तो आत्मा के विशेषण जो बता रहे हैं ना, सत्यत आनंद, इसमें ऐसा नहीं लगता। ये सत्यत आनंद आत्मा के विशेषण नहीं है। पहले तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि विशेषण है, लेकिन शंकराचार्य जी ने इसका निषेध कर दिया। वो कहते जी आत्मा के विशेषण नहीं है, नहीं वो कहते कुछ भी नहीं है, आत्मा का स्वरूप है, विशेषण नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं सचित आनंद आत्मा के विशेषण नहीं है, ये तो उसका स्वरूप है। ये नहीं कि उसको छोड़ के अलग रहते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा ही सत है, आत्मा ही चित है, आत्मा ही आनंद है, लेकिन हमारे को समझाने के लिए कहते हैं कि ये विशेषण है उसके।
समझाने के लिए। हाँ, और यदि जो विशेषण होते तो अलग अलग होते, ये भी बात है। जो सत होता विशेषण वो अलग रहता, जो चेत होता वो अलग रहता, आनंद अलग रहता। ऐसा नहीं है, जो सत है वही चेत है, जो चेत है वही आनंद है, इसलिए उसका विशेषण नहीं है। जो किसी में विशेषण होते हैं अलग अलग रहते हैं, तो ये ज्ञानी है, ये पाठी है, ये ऐसा है, उसमें जो कुछ रहता है ना, ये विद्वान है, ये मूर्ख है, जो कुछ विशेषण अलग अलग रहते हैं, ये तो एक ही है। जो सत है वही चेत है, जो चेत है वही आनंद है, इसलिए विशेषण नहीं है आत्मा के। पर यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये उसके विधेय विशेषण है, विधान किया जाता है कि उसको सत मानो, वो सच्चा है, वो चेतन का अर्थ होता है वो चित्त प्रकाश स्वरूप है। तो पहले यही बताया कि आत्मा सत चित आनंद रूप ब्रह्म स्वयं प्रकाश कूटस्थ रू साक्षी विचारे। जिज्ञासु आत्मा का विचार किस प्रकार करे, हम लोगों ने जब चिंतन करना है बैठ करके अपने स्वरूप का ध्यान करना, तो किस प्रकार करेंगे? उपासना होती है, उपासना उपासना अनेक प्रकार की होती है। अहंग्रह उपासना में होती है, कई प्रकार की प्रतीक उपासना में होती है। प्रतीक उपासना होती है, जैसे किसी फोटो को मान के हम उपासना करते हैं, प्रतीक है ना वो, किसी के बताने का, ये हमारे को टारगेट इसको देख करके उनका ख्याल आता हमारे को। और एक अहम की उपासना होती है। इस प्रकार कई प्रकार की उपासना होती है, लेकिन उपासना में भी द्वैत रहती है, उपासना में भी एकता नहीं होती है, द्वैत रहती है। एक उपासक है, एक उपास्य है, एक उपासना करने वाला है कि जिसकी उपासना करता है, दो हो गए कि नहीं? जब तक द्वैत है, द्वितीयाद भी भयम भवती, दूसरे से भय होता है। जब भी आपको भय होता है दूसरे से होता है, जब तक द्वैत है तब तक आपको भय होता है, जब तक दुविधा है तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। दुविधा विच वैराग ना हो वही, गुरु महाराज कहते हैं दुविधा में वैराग्य कभी नहीं होता। और दुविधा इतनी मतलब प्रबल है कि मरती भी नहीं है जल्दी। जो इस मारे सोई सोरा, जो इस मारे सोई पूरा, कहा है ना महाराज जी ने, जो इस मारे सोई सूरा, जिसने इस द्वैत को मार दिया वो सूरमा है, वही पूरा है। जो इस मारे सो ब्रह्म ज्ञानी, वही तो कहते ब्रह्म ज्ञानी हो गया। इस मारी बिन था ना परे, इस मारी बिन, कितना महाराज जी ने लंबा प्रसंग दिया है इसका, इसके मारे बिना क्या क्या होता है, इसको मारना पड़ता है। अंत में रिजल्ट महाराज ने ये गुरबाणी में किया है कि गौर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। गुरु ने जिसकी द्वैत का नाश किया है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म का विचार कर सकता है। गौर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। गुरु के द्वारा जिसने दुविधा का द्वैत का नाश किया है, ब्रह्म का विचार करके चिंतन करके, वो अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। तो द्वैत में सुख नहीं मिलता, उपासना भी द्वैत में होती है। जो विचार करते हैं ना विचार, इसलिए कहते हैं ना कि कर्म से और भक्ति से मुक्ति नहीं होती, कर्म से भी मुक्ति नहीं होती और उपासना से भी नहीं होती, क्योंकि कर्म भी द्वैत में होता है, उपासना भी द्वैत में होती है, लेकिन उससे होता फल तो उसका मिलता है, ये नहीं कि फल नहीं मिलता है। यदि आप निष्काम भावना से कर्म करेंगे, कर्म के फल की आस नहीं रखेंगे, तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसका फल है। आपके मन की शुद्धि होती है निष्काम कर्म करने से, भाव कामना से रहित हो जाओ। दान कर रहे हैं आप तो दान के एवज में, दान के बदले में मांगो मत, बस दे दिया, कोई संकल्प नहीं करना, मैंने दिया ये भी संकल्प नहीं होना चाहिए। जब ये संकल्प हुआ मैं दे रहा हूं, तब भी आप करता हो गए, आपको भोगता बनना ही पड़ेगा। जिस चीज के भी आप करता हो गए उसके भोगता आप अवश्य होंगे, इसलिए बिना संकल्प किए ही छोड़ना चाहिए। कुछ भी देना हो तो बिना संकल्प, अंदर में कोई बात आनी नहीं चाहिए। इसी को तो, इसी से तो हम फंस जाते हैं। हम कहते हैं दान तो बहुत करते हैं, लेकिन साथ में उसी समय नाम में तो नोट कराते हैं, हमारा नाम बोलो साथ में, या हमारा पत्थर लगाओ, पत्थर भी तो लगाते ना साथ में, तो वह तो कहते हमारे पुत्र पोतरे भी याद रखें पढ़ के, मेरे दादा ने दान किया था, तो उसका फिर हमारे को निष्कामता कहाँ से आएगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा कभी भी। वो तो हमने पक्का कर दिया कि आगे वाले भी सब देते रहेंगे। तो दान का या मतलब यज्ञ का, होम का, पाठ का, मतलब ध्यान का ये मतलब होता कि उसमें कोई फल की आशा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निष्काम। तेरो किया तुझे है क्या अर्पों, ये बात है ना, बोलते तो हम आरती में भी हैं कि जो कुछ है सो तेरा, हर रोज बोलते तेरा तुझको सब ते क्या लाग गया मेरा, लेकिन कभी ऐसा मन में आया कि ये तेरा है तेरे को दे रहा हूँ, कहते मेरा है मैं दान कर रहा हूँ। बोलते रहते हैं कि तेरा है तेरे को दे रहे हैं, तो जो जिसका हो उसको वापस करना, तो उसमें अपना अधिकार कौन सा हुआ, जो जिसका हो उसको वापस करके कभी कहते हैं कि मैं तेरे को दे रहा हूँ, कहते हैं कि नहीं ये तो आप ही का था। संसार में तो लोगों को ऐसा कहते हैं, कोई चीज किसी की लाते हैं ना तो संसार में तो कहते हैं कि आपका था, आपने बहुत उपकार किया हमारे ऊपर, इसलिए हम आपकी आपको वस्तु लौटा रहे। भगवान को कभी हमने ऐसा नहीं किया, कहा दान करते समय कभी कहा है कि आपने कृपा की थी हमारे को दिया था तो हम आपको आपकी वस्तु आपको दे रहे, कभी हमने ऐसा नहीं कहा। कहते हैं कि मैं अपनी जो मेरी कमाई उससे आपको दसवंध दे रहा हूं, इसलिए हम लोग कर्ता बनते हैं ना, जो कर्ता नहीं होते। हमारे को सिखाया है भगवान ने, गुरु लोगों ने सिखाया है हमारे को, कैसे सिखाया है आपको पहले भी एक दिन बताया था कि जिस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पूरा परिवार शहीद हो गया, बड़े साहबजादे भी शहीद हो गए चमकौर में, छोटे सरहंद में, माता गुजरी भी शहीद हो गए, तो गुरु महाराज जी फिर कैसा परमात्मा का शुक्राना कैसे करते हैं। उन्होंने सिखाया हमारे को कि तेरो किया तुझे है क्या अर्पूं, जो हम कहते हैं ना जो किस है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग गया मेरा, उसको महाराज जी ने माशीवाड़े के जंगल में जब टिंड का सराहना लेके सोए थे वहां उन्होंने शुक्राना कैसे किया है, मित्र प्यारे नु हाल मरीदा का कहना, वहां उन्होंने शुक्राना किया है। कहते हैं आपने बड़ी कृपा की है, जो आपने हमारे को इमानत दी थी ना उसको हम आपकी कृपा से बिना किसी दोष से आपको लौटाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये नहीं वहां कष्ट नहीं हुआ कि आपने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे बच्चे वहां शहीद हो गए, हमारी माता वहां शहीद हो गई, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से उन्होंने कहा था कि मित्र प्यारे नु हाल मरीदा का कहना, जो गुप्त हो करके जो शरीर छोड़ करके जा रहे थे ना वैकुंठ को, उन्होंने कहा महाराज जी आपका कोई संदेशा हो तो बताइए, उनको महाराज जी ने शुक्राने का संदेशा दिया कि मैं शुक्राना वहां पड़े हैं, कोई राज नहीं, कोई साज नहीं, कोई ताज नहीं, कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं, कपड़े भी फटे हुए हैं, पाँव में कांटों के इतने इतने बड़े बड़े मतलब कांटे खुबे हैं पाँव में, इतने इतने छाले पड़े हैं महाराज जी के, तब भी वो शुक्राना करते हैं उसका। कहते हैं मित्र प्यारे नु हाल मरीदा का मतलब हमारा मरीदों का, हमारे सेवक का, हमारे मित्र प्यारे को संदेशा देना जा करके कि तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना, मतलब कहते हैं कि तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, यदि तेरी जात भूल जाए हमारे को, तेरा चेता भूल जाए तो रजाइयां दा ओढ़न, जो बड़े बड़े मखमल के गद्दों के ऊपर सोना है ना, रोग के बराबर है, तुझ बिन तेरे बिना यदि तेरी याद नहीं है तो अच्छे अच्छे मखमल के गद्दों में सोना, रजाई ओढ़ करके सोना, रोग है तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न और नाग निवासां दे रहना, मानो सर्पों के बीच में निवास करने की तरह होता, जहर जहर ही होती है ना वहां, यदि आपकी याद भूल जाए, भाव आपकी कृतज्ञता यदि हमारे में ना रहे तो पदार्थों का भोगना कैसे है, रोग के बराबर है। यदि आपकी याद नहीं है, आपका मतलब उपकार हमारे को यदि याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सूल सुराही खंजर प्याला बेंग कसाइयां दा सहना, ये भी कहा ना, सूल सुराही खंजर प्याला, सुराही सूल दे बराबर है और खंजर प्याला अच्छे अच्छे प्याले भर भर के पीने जो पीते हैं लोग, वो तो खंजर है, जैसे खंजर किसी को लगा दो, यदि आपकी याद नहीं है तो। व्यंग कसाइयां दा सहना, जैसे व्यंग बोलते ना, व्यंग मारते हैं किसी को, इसलिए उन्होंने कहा यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। उस यार दा, उस प्रभु दा जो है ना सत्थर, वहां पर पड़े थे ना पृथ्वी पर, कोई वहां बिस्तर थोड़ी है, वहां ऐसे ही एक मतलब टेंट लेकर के पड़े हैं, भाव ईट कच्ची सराहने लेकर पड़े हैं ना, वहां पर शुक्राना करते हैं भी यही अच्छा है, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। सत्थर कहते हैं बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं होता है, कहले हमारे को ये यार, यार का दिया हुआ यही अच्छा है, क्योंकि हमारा यार अभी खुश है, जो कुछ हमारे यार का हमारे को दिया हुआ था ना, हमने उसको प्रेम से लुटाया है। पट्ठ खेड़िया का रहना, वो तो पट्ठी के बराबर है, जैसे पट्ठ में सोना होता जलना होता है, यदि उसकी याद भूल जाए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम लोग कृतज्ञता नहीं रखते कभी भी भगवान की, उसका दिया हुआ उसके ऊपर कब्जा मार के उसको जताते हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं, हम इतना दान कर रहे हैं, हमने इतना मंदिर बनवा दिया, हमने इतना पत्थर लगवा दिया, ये हम कितनी देर याद रखते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, कोई साथ में जाएगा तो बताएंगे ये देखो हमारा पत्थर लगा है, तो फिर भगवान का क्या हुआ, भगवान तो वैसे ही रह गए, उनको तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, हम लोगों का अपना ही हुआ सब कुछ। इसलिए कहते हैं लोगों ने राम खिलौना जाना, लोगों ने भगवान को खिलौना बना रखा है, क्योंकि भगवान कहते हैं आप नहीं समझते, वो याना नहीं है, वो सबको जानता है, और लोग कहते हैं कि हमने उसको याना बना रखा है, कहते वो सब जानता है, उसको सब मालूम है। तो हम लोगों की हालत ये हो गई कि हम झूठे के ऊपर कब्जा करके तभी हम सत्य को नहीं समझ पाते। ये कहते आत्मा सत्य है, संसार जितना है से ये असत है, झूठा है। पहले बताया था कि संसार असत है, तो एक दूसरे के साथ विश्लेषण करके हमारे को समझना पड़ेगा ना कि आत्मा सत्य है और प्रपंच असत है। तो असत का अर्थ क्या होता है, जो कभी भी नहीं होता, तीनों कालों में होता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ना असतो विद्यते भावो, असत का कभी भाव नहीं होता, विद्यमानता नहीं होती। ना भावो विद्यते सतः, ना अभावो विद्यते सतः, जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता, जो असत है उसका कभी भाव नहीं, कभी दिखता नहीं है, कभी रहता नहीं है, तीनों कालों में होता ही नहीं है। तो जो प्रपंच है ये असत है, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ तो फिर दिखता क्यों है, बात वहां ही आ जाती। फिर जब कभी भी नहीं आप कहते हुआ तो ये क्या है जो दिख रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, प्रपंच तो इसी को कहते हैं जो दिख रहा है, कहते दिख भी रहा है, आप कहते हैं हुआ भी नहीं है, तो समझेंगे कैसे। एक हमारे विद्यार्थी आए थे बनारस में, उन्होंने जाने से पहले जहां वेदांत सम्मेलन सुन लिया, तो वहां जाकर के कहते महाराज वहां 8 दिन एक ही बात बोलते रहे आप लोग, कि जो है जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। वो कहते आप 8 दिन में तो वहां यही सुनता रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी महात्मा कहते बोलता यही कहता है कि जो दिखता है ये है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तो कहते कैसे पता चले, हमारे कहते समझ में नहीं आता कि जो दिखता है वो है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो कहते हैं है तो जरूर है, जो दिख रहा है जिस रूप में आप देखते हैं उस रूप में नहीं है, रहता तो है सामने, हमारे को भी दिखता है, फिर भी महात्मा जब कहते हैं असत है तो फिर क्या हुआ। जो नाम और रूप है ना दो, वो असत हैं। जो संसार का नाम है और रूप है ना, ये असत है, बाकी तो है। सर्वम खलविदम ब्रह्म कहती है श्रुति भी, ये ब्रह्म है। और ब्रह्म और प्रपंच इकट्ठे कैसे रहेंगे, दोनों प्रकाश और अंधेरा दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते कभी भी, लेकिन इसमें दोनों हैं, प्रकाश अंधेरा कभी भी इकट्ठे नहीं रहते, लेकिन अंधेरे को बताएगा कौन, अंधेरे को बताएगा कौन, प्रकाश ही बताएगा ना कि अंधेरा नाम की कोई चीज है, प्रकाश ही बताएगा। इसी प्रकार ये जो प्रपंच है ना, नाम और रूप दो चीजें हैं प्रपंच नाम वाली, बाकी तो ब्रह्म है। नाम और रूप जो है ना, इसको प्रकाशित भी ब्रह्म ही करता है। इसका भाव है कि उसी में ही है, ये उसी में रहता है। ये जो दिख रहा है ना, नाम और रूप को छोड़ करके ब्रह्म है। जो नाम और रूप है ना, ये प्रपंच असत है। हमारा जो नाम है क्यों असत है? क्योंकि बदलता रहता है। नाम बदलता रहता है कि नहीं? पहले हमारे को बालक कहते थे, बाद में हमारे को जवान हमारा नाम हो गया, बाद में वृद्ध हो गया, तो बदल रहा है कि नहीं? यहां पर हम बैठे हैं, जहां आप घर में बैठे हैं, तो आप एक के प्रति आप पिता हैं, दूसरे के प्रति आप पुत्र हैं, तीसरे के प्रति आप पति हैं, तो आपका नाम बदल रहा है कि नहीं? क्षण क्षण में बदल रहा है। और जो आपका आकार है वो भी बदल रहा है। रूप का अर्थ होता आकार, केवल रूप का अर्थ रंग नहीं होता, रंग भी उसका अर्थ होता, आकार भी होता है। आकार भी आपका बदल रहा है। पहले आपके बाल काले थे, आप बाद में सफेद हो गए। तो इसका मतलब नाम और रूप जो है ना, यही तो प्रपंच है। अस्थि भाती जो प्रिय है वो तो ब्रह्म है। इसलिए ये संसार कहते असत है। नाम रूप जो है ना, ये असत है, बाकी तो सत है, वो तो रहता है। इसलिए ये सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा ना, आत्मा ही आत्मा भी इदम सर्वम, आत्मा वही इदम सर्वम, ब्रह्म वही तुम सर्वम। ये सब ब्रह्म है, ये सब आत्मा है। तो जो आत्मा हो, ब्रह्म हो, तो इसका नाश नहीं होना चाहिए, नाश हो रहा है। यदि आत्मा है, संसार ब्रह्म है, तो फिर इसका नाश क्यों हो रहा है? तो ये ही समझना है ना, और क्या समझना है? कि इसका नाश नहीं होता, ब्रह्म जो है ब्रह्म का नहीं होता, नाम और रूप का नाश होता है। नाम खत्म हो जाता है, रूप मतलब आकार खत्म हो जाता है, बाकी जो रहता है वो ब्रह्म है। और किसी का थोड़ी नाश होता है, किसी भी वस्तु का नाम और उसका आकार चला जाता है। जिसके आश्रित वो खड़ी है वो तो रहता है। ये मकान जो है, जब इस गिरेगा तो इसका नाम खत्म हो जाएगा, इसका आकार खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा ये? ये जिसते उपजा नानका सोई फिर हुआ, कहा है ना, जिसते उपजा नानका सोई फिर हुआ। जिससे उत्पन्न हुआ था वही हो गया, तो क्या हुआ? इसका मतलब जो पहले था सदैव सौम्य मग्रासी, ये सौम्य ये सत्य ही था, कहते हैं ना वो कि ये सत्य ही था। तो इसका मतलब जिसते उपजा नानका सोई फिर हुआ, फिर वही हो गया। तो इसका मतलब पहले भी सत्य ही था, मध्य में भी सत्य है, बाद में भी सत्य ही है। हम लोगों ने जो मध्य वाला है ना, इसको हमने माना है सत्य, जो दिखाई पड़ता है ना। हम पहले वाले को सत्य मानते हैं, ना बाद वाले को सत्य मानते हैं, मध्य वाले को सत्य मानते हैं। तो जो मध्य में रहता है वो सत्य होता नहीं कभी भी, पीछे बताया था। जो बीच में भासता है वो कभी सत्य नहीं होता। जो तीनों कालों में रहता वो सत्य होता है। इसलिए कहते हैं कि जो आत्मा है वो सत्य है, त्रयकाल अबाध है, वो तीनों कालों में उसका कभी नाश नहीं होता। उसको हमने जानना है कि एक तो हमारा आत्मा, हमारा स्वरूप कैसा है? सत्य है। जब हम सत्य को निश्चय कर लेंगे ना, तो कभी भी हम इस असत के साथ प्रीति नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे को मालूम है कि ये बदल गया है। पहले ये बालक था, अभी जवान हो गया, उसके बाद ये वृद्ध हो गया, ये हुआ है, हम नहीं हुए। ये निश्चय करना ना, ये बदला है, इसका नाम बदल गया है, हमारा नाम नहीं बदला। हमारा नाम था ही नहीं कोई, नाम तो माता पिता ने इसका रखा था। तो हम कभी ऐसा सोचेंगे विचारेंगे तभी होगा ना। ये थोड़ा हम कहते हैं कि मैं मतलब स्नान कर रहा हूँ, कहते ना जो भी कहते, मैं शरीर को नहा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हम कहते। हम कहते मैं नहाने जा रहा हूँ। हम कहाँ से नहाएंगे? कौन से किस चीज को नहाएंगे हम? हाथ के ऊपर पानी डालेंगे, पांव के ऊपर डालेंगे, हम कहाँ हैं इसमें? लेकिन हम तो यही कहते हैं मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाता तो शरीर है, इसको हम नहाने जा रहे हैं, नहाने इसको नहलाने के लिए जाते हैं, कहते मैं नहाने जा रहा हूँ। जब कहना तो इसी तरह ही पड़ता है, जो तत्ववेता हो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वो उनके अंदर भाव होता है कि मैं इसको नहाने जा रहा हूं, मैं नहीं नहाता हूं, क्योंकि ये नहाएगा तब भी मैं जानता हूं, जब इसने नहीं नहाया तब भी मेरे को मालूम है भी अभी ये नहाया नहीं है। तो यही तो हमारा अलग पना है, और क्या है, हम शरीर नहीं है, हमारे को मालूम है, ये कोई भी गलती करता है, हमारी आंख गलती करती है, हमारे कान करते, तो हम जानते हैं। तो जो गलती कर रहा है वो अलग होता है, जो देख रहा है वो अलग होता है, हमारे को मालूम सब रहता है कि आज मेरे कान जो है गड़बड़ हैं, आज मेरी आंख जो है गड़बड़ कर रही है। तो जो देख रहा होता है वो अलग होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता उससे, फिर भी हम इसके साथ अटैच हो गए तो अपने को आंख, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मेरे को आपने ये बोला। किसी से लड़ क्यों पड़ते हम लोग? बनारस में हमें एक दिन हम लोग बैठे थे, एक बहुत हमारे तत्ववेता महात्मा है, ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, वो अभी भी हैं, साक्षात्कार वाले महात्मा ऐसे नहीं है, उनको आत्मा ऐसे है जैसे आंवला रखा होता है हाथ पर, ऐसे हैं वो, हमारे गुरु भाई हैं बड़े। तो उनको एक महात्मा ने, वो वैसे तो चलते ही फिरते रहते हैं, रुकते नहीं है, घूमते ही रहते हैं, एक दिन वो आश्रम में आए तो उसको वहां कोई एक महात्मा नया नया था, तो उसने समझा ये ऐसे कोई भीख मांगने वाले होंगे, क्योंकि वो तो ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। तो उसने बोला आप कहाँ घुस रहे हैं यहाँ बाबा, आप जहाँ रोज आ जाते हैं घूमने, ऐसे बोला उनको, काफी अंडबंड बोला। तो उसने, उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, हम चले जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला उसको। लेकिन जो और महात्मा पास में थे उनको गुस्सा आ गया, वो जानते थे, लेकिन वो कहते नहीं इसको कुछ नहीं कहना, वो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर हमारे को जब मिले तो हमारे को किसी ने बताया, तो हमने कहा महाराज जी हम तो नहीं छोड़ेंगे उसको, उनको बोला हमने भाई महाराज उसने आपको ऐसा बोला तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसकी तो उसकी खबर लेंगे अच्छी तरह। वो कहते क्या हुआ, हमारे को बोला उन्होंने क्या हुआ, हमने कहा महाराज ऐसा उसने आपका अपमान किया। वो कहते किसका अपमान किया, आप लोगों को लगता है ना कि अपमान किया है, उसने बोला क्या, उसने शब्द बोला है ना, तो शब्द तो हवा में रहता है, शब्द का, शब्द कहते हैं आकाश का गुण है, शब्द आकाश का गुण है, वो तो आकाश में रहता, हमारे में थोड़ी है। शब्द बोला उसने, शब्द आकाश में रहता है, शब्द हवा से आता है, तो मेरा क्या हुआ, शब्द बोला उसने तो शब्द आकाश में चला गया, मेरा क्या बिगड़ा। ये बात होती है तत्ववेत्ता की बात, ये हमारी अपनी देखी हुई प्रैक्टिकल की बात है, उन्होंने हमारे को बताया कि शब्द आकाश में रहता महात्मा जी, इसलिए हमारे को कुछ नहीं कहा उसने, उसने हमारे को कुछ नहीं बोला। वो कहते हैं आप अपना दर्पण साफ कीजिए, हमारे को बोला उन्होंने कि आपका दर्पण जो है वो मलिन है, इसलिए आपको दूसरे का मुंह साफ नहीं दिखता, आपका दर्पण सही नहीं है। वो कहते जब आपका दर्पण, आपका शीशा साफ हो जाएगा तो अपना मुंह आपको साफ दिखेगा, आपके शीशे में भी गड़बड़ है, हमारा शीशा साफ है इसलिए हमारे को साफ दिखता है। तो ये बात होती है कि हम लोगों को तभी गड़बड़ होता ना, तभी हमारे को किसी की गाली या किसी का मान अपमान हमारे को लगता है कि हम लोगों ने शब्द को, शब्द बोलने का जो वाणी का विषय है ना शब्द, उसको हमने अपना मान रखा है, वाणी बोलती है हम नहीं बोलते। तो वाणी बोलती रहे, गलत बोले तब भी हम जानते हैं, सही बोले तब भी हम जानते हैं, हमारा क्या बिगाड़ती हो, बोलना उसका काम है, उसको बोलने दो। जो दूसरे की वाणी बोल रही वो भी तो वो थोड़ी बोल रहा है, उसकी वाणी बोल रही है। ये चिंतन करना तो ऐसा ही होता है ना प्रैक्टिकल में, कैसे घटाएंगे हम लोग, जे उसने गाली निकाली है तो उसने नहीं निकाली, उसकी वाणी बोली है, ऐसा शब्द उसका वाणी का विषय, उसका विषय नहीं है वो, तो हम तो दोनों एक हैं। वो कहते जो सामने वाला वो भी मैं ही हूं, बोल तो वाणी रही है, वाणी का उसको ही मतलब नहीं उससे। तो उसने हमारे को यदि बोला है तो हम कहते आपने हमारे को बोला है, उसने तो बोला ही नहीं, उसकी वाणी ने बोला है, तो वाणी वाणी को आप उसमें झगड़ने दो, हमारे को क्या मतलब है। लेकिन हम लोग वाणी के साथ अटैच हुए हैं, हम कहते मैंने बोला है आपको, मैंने नहीं बोला, वाणी बोली है। तो इसलिए जब वाणी को हम जानते हैं कि वाणी गलत बोलती, तो वाणी के ऊपर कंट्रोल करो ना, अपने को उसके साथ में अटैच नहीं करो, वाणी को हम समझ गए कि इसने गलत बोला है तो उसको अपने कब्जे में करो कि मेरे बिना पूछे आप नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी बिना मेरी पावर के तेरे में बोलने की शक्ति नहीं है। तो वाणी को कंट्रोल करने का अर्थ क्या होता है कि वाणी को अपनी पावर मत दो, तो बोल ही नहीं सकती, वो तो जड़ है। जब हम पावर देते हैं तभी वाणी बोलती है ना, पावर तो हमारी है। जब पावर है उससे बिजली कट जाएगी तो बल्ब ट्यूबे क्या करेगी, पावर है उस तो हम हैं, हम पावर है उससे उसको देते हैं थोड़ा सा करंट तभी वो बोलती है। लेकिन हम ऐसा मानते ही नहीं है ना, हम मानते कि हम बल्ब हैं, हम पावर है उस नहीं है। हम अपने आप को पावर है उस माने तो फिर बल्ब की क्या चले। हम अपने आप को वाणी मानते हैं तभी कहते हैं मैंने बोला है, तो बोलना पहले बता दिया था, बोलना किसका काम है, एक कर्म इंद्रिय है ना, वाणी हमारा कर्म इंद्रिय है, इसका काम है बोलना। स्वाद लेना किसका काम है, रसना का काम है। तो हम कहते मेरे को बहुत स्वाद आया, स्वाद तो रसना ने लिया, हमारे को थोड़ी आया है। तो यही अध्यास है, छोटी छोटी बात पर जब विचार करेंगे ना तब अध्यास होता। संसार में झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता, यदि संसार के लोग चिंतन करें तो फसाद धर्म का जहा जितना भी होता है इसलिए तो होता, वाणी से ही सबको झगड़ा होता है ना। तो श्रुति ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि ये क्या है, वाचा रमणम विकारो नाम धेयम तस्य मृत्य का यु सत्यम। जो घड़ा आपने बोला, घड़ा कहते वहां क्या है, घड़ा बोला ना आपने, एक कुलाल जो होता कुम्हार होता ना, उसने एक मिट्टी का पेंड इकट्ठा करके गोलमोल करके आपके सामने रखा, उसको बोल दिया घड़ा, क्या है वहां। श्रुति कहती है वाचा रमण विकारो नाम धेयम, ये तो विकार वाणी का है, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो वाणी ने कह दिया ये घड़ा है, वहां कुछ भी नहीं है घड़ा, वहां तो मिट्टी है, घड़ा कहां से निकलेगा वहां से कोई। कहते केवल वाणी से बोल दिया कुमार ने ये घड़ा है, ये सुराही है, ये प्याला है, कुछ भी नहीं है। वाणी उसकी खत्म हो जाएगी तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो मिट्टी है। तो जितना झगड़ा हो रहा है केवल वाणी से हो रहा है, हुआ कुछ नहीं है। तो वाणी एक कल्पना की हुई है ना, ये एक मिथ्या है। जो अब हमारा शरीर मिथ्या है, संसार मिथ्या है, कर्म इंद्रिय है ना वाणी, वो मिथ्या है, तो उसका बोलना भी मिथ्या है। इसलिए वाणी के पीछे हम लोग झगड़ पड़ते हैं, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। जब चिंतन करेंगे कि वाणी जो है एक कर्म है, कर्म इंद्रिय है, उस कर्म इंद्रिय का काम है बोलना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इनको देखना, देखते रहो बस कि ये क्या करते हैं। जो देखने वाला था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखता रहता अपनी मस्ती से, उसको पूछो कहते हम तो देखते हैं, हमारे को इनसे क्या लेना है। तो साक्षी, साक्षी का जो बार बार अपने को शब्द रटाया जाता है ना, साक्षी हम किसको कहते हैं, गवाह को कहते हैं ना, गवाह होता है जो देखता रहता है। हम लोगों ने देखना है इसको, सबको ये क्या कर रहे हैं, इनको कहना कुछ नहीं है ना, इनके साथ झगड़ना है, केवल अपने आप को दृष्टा बनाना है ना। तो दृष्टा ऐसे ही बनाया जाता है, दृष्टा शब्द कह देना अलग बात है, दृष्टा का भाव समझना अलग बात है, कि आंख को देखते रहो कि ये क्या करती है, गलत देखती है कि सही देखती है। यदि गलत देखती है तब भी आप जान गए, यदि सही देखती है तब भी आप जान गए, लेकिन जो भी आंख ने देखा उसको हमने पकड़ लिया, आंख ने जिसको भी देखा उसको हमने पकड़ लिया, तो हम अपने आप फंस रहे हैं कि नहीं। हमारा काम था देखना केवल आंख को, तो जब आंख ने किसी को देखा तो जिसको उसने देखा था इसने तो छोड़ दिया देख के, हमने पकड़ लिया, इसने तो इतना ही काम किया, इसने और कुछ नहीं किया, इसने उसको देख के हमारे को दे दिया, हमारे को मतलब मन को दे दिया, तो मन के साथ हम फंसे हुए हैं। इसने देखा मन को दे दिया, और मन के साथ हम अपने आप को एक मानते हैं, तो हमने पकड़ लिया वो बहुत अच्छा है। आंख ने उसके बाद कुछ नहीं किया, आंख तो दूसरी तरफ हो गई, लेकिन हमने पकड़ के उसको अपने पास बिठा लिया, ये इसको हम लाएंगे कहीं से भी लाएंगे, एक बार देख लिया ना जो, उसको हमने पकड़ लिया। कान ने सुना ना शब्द, एक बार गाना सुना फिल्म का गाना, तो कान ने तो सुन के हमारे को दे दिया, लेकिन हमने पकड़ के बिठा लिया उसको, ये अब एक कैस्ट लेके आएंगे तब मजा आएगा सुनने का। तो दूसरे की चीज के ऊपर हम जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं कि नहीं, तो फंसेंगे ना। हमारा तो काम था इसको देखना, लेकिन जो इसने देखा उसको हमने पकड़ लिया, तो हमारे से तो ये अच्छा है, उसने पकड़ के देख के छोड़ दिया, हमारे को दे दिया, हमने गांठ बांध के उसको अपने को रख लिया। ये बात तो यही हो रही है, साक्षी का मतलब यही है कि इनको देखो ये क्या करते हैं। जब ये करते हैं गलत देखते हैं तो इनको कंट्रोल करना है हम, क्योंकि हमारे में पावर है इनको कंट्रोल करने की। तो महाराज जी तो कहते हैं बार बार कि ये आंखों को देखो ये क्या करती हैं, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। ये कहते हैं इनको, हमारे को अविद्या ने कैसे ग्रास रखा है, हमारे नेत्रों को अविद्या ने क्या किया, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, दूसरे की पराये की विकार दृष्टि से देखना ही इसको अविद्या लगी हुई है आंखों को। दूसरे को ये विकार की दृष्टि से देखती है, दोष है ना इसमें। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए स्वर्ण निंद विचार। जो हमारे कान हैं ये कैसे सोए हुए हैं विद्या में, निंदा और स्तुति सुनते हैं। श्रवण सोए स्वर्ण निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध। जो हमारी रसना है वो अविद्या में कैसे सोई हुई है, उसको लोभ है स्वाद लेने का। रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। हमारे मन को कैसे निद्रा ने पकड़ रखा है अविद्या ने, मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, ये महाराज कहते हैं, ये शरीर रूपी घर में कोई जागता रहता है ना, जो सावत वस्तु अपनी रहे, उसको अपनी वस्तु जो आपका स्वरूप है उसको उसको साबत मिलता है, दूसरे का तो साबत नहीं रहता, लूट जाता है। जागत रहे कोई यदि, तो जागत तो हम रह नहीं रहे, कहते हैं कि हम जाग रहे हैं। हमारे कहते हैं आपके कान भी सोए हैं, आपके आंख भी सोई है, आपका मन भी सोया है, आपकी रसना भी सोई है। अब महाराज जी तो झूठ नहीं ना बोल सकते, अभी हम कहेंगे हम जागे हैं तो हमारे कहते हैं नहीं आप नहीं जागे हैं, आपकी आंख भी सोई है, आपके कान भी सोए हैं, आपका मन भी सोया है। गुरु महाराज कह रहे हैं इसका मतलब हम नहीं सोए, हम जागे नहीं हैं। तो जब तक जागते नहीं तब तक सपना समाप्त नहीं होगा। तो महाराज जी कहते हैं भी जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहां गाफल सोया। वो कहते हैं आप सोए पड़े हैं, आपको भ्रम है कि हम जागते हैं, आप जागते नहीं। यदि आप जागते होते ना, आपकी आंख यदि जगी होती तो वो किसी को विकार दृष्टि से नहीं देखती, क्योंकि ये आंख आपको किस लिए दी है, महात्मा के परमात्मा के दर्शन करने के लिए दी है आंख। तो परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा, वो कहीं मंदिर में नहीं है, कहीं गुरुद्वारे में नहीं है, कहाँ देखोगे उसको। आंख से जब परमात्मा को देखना है तो कहाँ देखेंगे, जब परमात्मा नहीं दिखे तो आंखें बंद कर रखेंगे उतनी देर, आंखें तो कभी बंद होगी नहीं, खुली रहेगी दिन में पूरा दिन, तो परमात्मा कहाँ दिखेगा। हमारे को आंख जो दी गई है परमात्मा का दर्शन करने के लिए दी गई है, कान जो सुनने के लिए हरि भजन कथा सुनने के लिए दिए गए हैं, रसना जो है वो परमात्मा के नाम का रस लेने के लिए है। तो ये कहते हैं कि ये आपके सब इंद्रिय सोए पड़े हैं, इनको जागना, इनको इनसे क्या आप मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने हैं, मिथ्या हस्त पर दर्प को हेरे। कहते हैं ना कि मिथ्या नेत्र आपके जो नेत्र हैं ये मिथ्या हैं, आपके जो कान हैं ये मिथ्या हैं, झूठे हैं, कल्पित हैं, व्यर्थ हैं। कहते हैं मिथ्या श्रवण, आपके जो श्रवण हैं ये मिथ्या हैं, आपके हस्त पर दर्प को हेरे। यदि प्राय के धन को चोरी करते हैं तो आपके हाथ व्यर्थ हैं। कहते हैं ना महाराज सुखनी साहब में, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने हैं, यदि आपके कान दूसरे की निंदा सुनने में लगे हुए हैं तो व्यर्थ हैं। यदि आपके हाथ दूसरे का धन चोरी करने में लगे हुए हैं, ठगी मारने में, तो हाथ आपके मिथ्या हस्त पर दर्प को हेरे हैं। मिथ्या नेत्र बेखत पर त्रिय रूपाद, आपके नेत्र व्यर्थ हैं यदि स्त्री का रूप देखते हैं। तो फिर देखेंगे क्या इनकी सफलता कैसे होगी। इससे हरि का दर्शन करने से जे सफल होंगे, हरि का दर्शन करना है यही सामने जो दिख रहा है इसको हरि रूप में देखना है। जिसको आप काल दृष्टि से देखते हैं ना उसमें हरि का दर्शन करो। कहते हैं वो एक दिन सुना रहे थे ना महात्मा यहाँ कि स्वामी राम तीर्थ जी बाहर गए थे ना तो कहीं खड़े थे वो गली में चौराहे पर खड़े थे तो एक वहाँ से कोई मतलब लड़की जा रही थी बहुत सुंदर लड़की तो उसकी तरफ देख रहे वो अच्छी तरह तो लोग इकट्ठे हो गए कि ये भारत का सन्यासी इसको क्या हो गया। भारत के सन्यासी तो बहुत माने हुए हैं, ये लड़की को देख के इसका मन मोहित हो गया। लोगों ने बाद वो देखते ही गए, वो जा रही थी लड़की पीछे देखते वहाँ खड़े देख रहे थे तो लोगों ने पूछा लोगों ने हिलाया बाबा जी आपको क्या हो गया इस लड़की को देख के आपका मन मोहित हो गया है। कहते नहीं नहीं वो कहते फिर क्या हुआ ऐसे देखने का कोई मतलब ही नहीं है। कहते मन मोहित नहीं हुआ, मैं तो इसको देख करके देख रहा हूँ इसकी सुंदरता को कि ये इतनी सुंदर है जो इसका बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा, जिसने इसको पैदा किया उसमें कितनी सुंदरता होगी, मैं उसका दर्शन करता हूँ। इसको देख के मेरे को कुछ नहीं हुआ, इसका रूप इतना सुंदर है तो जो बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा, ऐसा चिंतन होता है ना। ऐसे भगवान के दर्शनों उसमें वो परमात्मा को दर्शन करते थे कि तुम कैसे सुंदर हो, इसका इतना सुंदर रूप है तो जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा। तो हरि का दर्शन तो इसी प्रकार होगा ना नेत्रों से। तो नेत्रों को कैसे हमें मतलब नेत्रों से भगवान का दर्शन करना है, कान से हमने श्रवण करना कथा, भगवान की कथा कीर्तन हरि संकीर्तन श्रवण करना है। इस प्रकार चिंतन करेंगे कि ये संसार की जो संसार है वो असत है, आत्मा सत्य है, क्योंकि संसार की हरेक वस्तु को हरेक वस्तु के अभाव को भी जानता, उसके रहने को भी जानता, भाव तीनों कालों में वो रहता है, सत्य का अर्थ होता है जो तीनों कालों में रहता है। संसार की वस्तुएं तीनों कालों में नहीं रहती, मध्य में रहती है, इसलिए आत्मा सत्य है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, तीनों कालों में वो रहता है। बस उसको घटाने का तरीका यही है कि हरेक हमारा जो इंद्रिय है, हमारे अंतःकरण है, प्राण है, उनके धर्मों को अपने में मत लाओ, उनके धर्म उसी में रहने दो। जब हमारे को भूख लगी है, हम कहते मेरे को भूख लगी है, हमारे को भूख नहीं लगती, भूख प्राण को लगती है, हमारे को भूख नहीं लगती है, क्योंकि जब प्राण नहीं ना चलते तब भी हम रहते हैं, जब मूर्छा आने के बाद में या मरने के बाद में नहीं रह, हम फिर भी रहते हैं ना, हमारे को मालूम रहता है। तो प्राणों को भूख लगती है, आप चार दिन भोजन नहीं करते तो क्या होता, आपसे बोला भी नहीं जाता, तो आपको थोड़ी कुछ होता है, प्राण काम नहीं करते, क्रिया शक्ति जो है वो क्रिया शक्ति कमजोर हो जाती है, आपको थोड़ी फर्क पड़ता है। व्रत रखते हैं तो आपका भार कम हो जाता है कि नहीं, आप कहते हैं 8 दिन व्रत रख के भार आप उसका भार तोलो तो 4-5 किलो कम हो जाता है, तो आपका भार घटा है कि शरीर का, आपको वैसे तो वैसे ही है, आपको शरीर का भार कम हुआ है तो फिर आप शरीर तो नहीं हुए ना, आपको आप तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन शरीर का भार कम हो गया तो इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम थोड़ी घटे हैं, हम तो वैसे ही हैं। यदि हम घट जाते तो हमारे में कोई फर्क पड़ना चाहिए था ना, शरीर में फर्क पड़ा है, प्राण शक्ति में कमजोरी आई है भूख से, इसका मतलब भूख जो है वो हमारा धर्म नहीं है, प्राण का धर्म है। हम कहते जल्दी मेरे को पानी चाहिए, मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये थोड़ी कहते कि मैं मर रहा हूँ, कहते प्राण जा रहे हैं मेरे, इसका मतलब प्राणों को प्यास लगी है, पानी प्राणों को दो जल्दी जल्दी, तो पानी पीने से प्राण जो है वो अपनी क्रिया करने लगते हैं, हमारे को नहीं फर्क पड़ता। जब किसी को कोई रोग हो जाता है ना, जब उसको इतना ज्यादा रोग परेशान करता है कि वो अपने शरीर से प्राणों से दुखी होता है, तो वो क्या कहता है, कहता है कोई ऐसी अरदास करो कि मेरे प्राण निकल जाएं, ये थोड़ी कहता कि मैं मर जाऊं, ये नहीं कहता, वो कहता प्राण निकल जाए, प्राण छूट जाए, इसका मतलब प्राणों को परे करना चाहता है, अपने आप को नहीं, क्योंकि वो तो मरता ही नहीं है। वो अपने लिए अरदास नहीं करवाता, वो कहता मेरे प्राण छूट जाए, मेरा शरीर छूट जाए, ये नहीं कहता भी मैं मर जाऊं। इसका मतलब उन्हें मरना ही नहीं है, उसको मारने वाला कोई है ही नहीं है, उस अरदास उसके ऊपर कोई नहीं करती काम। लोग कहते ना फलाने आदमी ने फलाने को मार दिया, उसने मंत्र पढ़ दिया तो फलाना आदमी मर गया, कैसे मरेगा वो, ये भी है कि नहीं भ्रम कि फलाने आदमी ने पाठ किया तो फलाना आदमी मर गया, कैसे मरेगा वो। जब किसी की अरदास करने पर भी नहीं मरता तो कैसे मरेगा, अरदास करने पर शरीर छूटता है, शरीर ही छूटता है ना। तो जो कोई किसी के ऊपर जंतर मंत्र द्वारा करता है वो उसके शरीर का नुकसान कर सकता, उसका नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते तुम्हारे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, तो किसका हमारे ऊपर चलेगा। जो भी नुकसान करेगा हमारे शरीर का करेगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जो सामने वाला है वो भी हम ही हैं, और तो कोई है ही नहीं है, आत्मा आत्मा तो हम ही हैं। हम लोगों को खैर भी भ्रम रहता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाऊंगा, हमारा कुछ नहीं होता, हमारे शरीर का हमारे प्राणों का जो कुछ होता वो होता है। इसी चिंतन से हम लोग सत असत को जान सकते हैं कि जितना भी ये हमारे को दिखाई पड़ रहा ये असत है, कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारे देखते देखते जा रहा है, हम लोग सत्य हैं। उसके बाद आता है चित्त, अब चित्त का विचार कल करेंगे, आज तो सत का ही विचार हुआ। अभी सत को कल तक हमारे को देखना है कि सत कहीं दिखता है कि नहीं, सत का विचार धीरे धीरे करेंगे तो पता चलेगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।